ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यन्त्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायुनोभिरमकार्तर्यानुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञैराधे तन्मयमहामचरणम्
टुडे आज हरिदास ठाकुर का हीरो भाव है। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। मुस्लिम होने पर भी भगवान का नाम करते थे। क्या नाम करते थे? 300,000 नाम करते थे। तो 300,000 नाम कौन सा होगा? कृष्ण कृष्ण होगा ना, राम राम होगा ना, क्या होगा क्या? इसलिए 300,000 नाम जपने के लिए भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे का चेता दूसरा और कोई भी विधि नहीं हो सकती। केवल कृष्ण 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 करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही करते हुए गिनती। कभी ऊंचा स्वर से करते थे, कभी मन ही मन में करते थे, कभी ऐसा करते थे जो स्वयं ही सुन सके दूसरे न सुन सके। उपांशु मानसिक और तीन रूपों में ही ये करते थे। दूसरी बात एक ये है, हिंदू को तो बात छोड़ दो, मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध कोई भी किसी भी जाति का क्यों न हो, भगवान का नाम करने से पवित्र हो जाता है और वो यज्ञ करने का भी काफी अधिकारी हो जाता है। सवनाय कल्पते, किंतु करते किस लिए नहीं है? रुचि नहीं है। हम लोग भी तो यज्ञ नहीं करते तो कोई भक्त कैसे करे? इसलिए उसी जन्म में वो इतना पवित्र हो जाता है कि दूसरे जन्म के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसी जन्म अजामिल को भी देखिए, सारा पाप किया, ब्रह्महत्या तक किया, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पिता का माता का एक तरह से द्रोहाचरण हुआ, किंतु कहते हैं कि एक बार नाम करने से ही वो पवित्र हो, उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से वो सद्य ही तत् समय में ही वो परम पवित्र बन जाता है, दूसरे जन्म की अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार से अजामिल अपने पुत्र के लिए नाम कर और समस्त पापों से छुटकारा उसका हो गया, प्रायश्चित तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को भी कोई प्रायश्चित, उन्होंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया। जो लोग हिंदू भक्त लोग नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको नामाचार्य का करके सम्मान दिया। तो जो भी ऐसी बात है, पवित्र हो गए हरिदास ठाकुर जी तो मंदिर में क्यों नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए? वो अपनी दया हीनता इसके लिए नहीं जाते। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग उनको भीतर न जाने दें, ऐसा भी हो सकता है, किंतु उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आज हरिदास ठाकुर के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दे रहे हैं। वे कृपा करें उनको ब्रह्मा जी का और प्रहलाद महाराज दोनों का मिलित अवतार बतलाया गया। ब्रह्मा जी दीनता वशत उस हनुमान कुल में जन्मे और सहिष्णुता गुण को जगत में प्रचार करने के लिए प्रहलाद महाराज जी हरिदास ठाकुर ने ब्रह्मा जी में, इसलिए उनको ब्रह्मा हरिदास कहा गया। हाँ, यू कैन ट्रांसलेट।
So today is the disproved day of Namacharya Srila Haridas Thakur. He was born in a Muslim family, but he used to chant Harinam, 3 lakhs Harinam, 192 malas every day. What then did he chant? The 16 names which composed the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Nothing else but this, day and night. Sometimes he would chant Vaj Japa, that means loudly. Sometimes he would chant Vipangsu Japa, very quietly, only moving his lips. And sometimes he would chant Manasik Japa, in his mind. So, whatever caste you are born in, whether Hindu, Christian, Buddhist, or anything, if someone who simply chants Krishna's name, then they become completely pure. For example, Ajamila, he committed so many serious crimes. He was a thief. He abused his parents. But only taking the name of Narayan once, and he became completely pure. There was no need of any prasthita, any type of atonement for his activities. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave disciples to Haridas Thakur, Namacharya, the person who studied the perfect example of how to take shelter of Krishna Nam. So on this day, we bring to him the spirit of his mercy upon us. He is the combined incarnation of Sakamukh Brahmaji and Prahlad Maharaj. Good Brahma, he appeared and took birth in the Muslim family, being controlled by, inspired by humility, great humility, and to teach humility to the whole world. And Prahlad Maharaj, in this incarnation of Haridas Thakur, is called Seshwata. That means how to be tolerant in the face of all types of difficulties. So these two great personalities combined in the culture of Haridas Thakur to give these teachings to the world, and we remember his prophecy on this day. भाव डालो, ये प्रश्न तो नहीं पूछता है। जयति अननिवासो देवकी जन्म बालो, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। जन जन के हृदय में निवास करने वाले और जन जन उनमें निवास करने वाला और देवकी के पुत्र हैं, ऐसी जिनकी ख्याति है अथवा बाद का भी विषय है, दोनों असल में जसोदा जी के पुत्र हैं इत्यादि को दिखलाते हुए सामने खड़े होते हैं। अब बतला रहे हैं जलवर परिषद स्वयं दुर्विरचन नगर जदुवर, जदु जितने हैं श्रेष्ठ लोग कौन कौन, जैसे अक्रूर जी हैं, उद्धव जी हैं, महाराज उग्रसेन हैं, सात्यकी हैं और जितने ये लोग हैं, ये सब जदुवर हैं, जदु में श्रेष्ठ, उनकी उस सभा में सब लोग सेवा करते हैं इनकी, कृष्ण की। और जादवों के पति हैं, जादव पति हैं, इसलिए जदु के द्वेष करने वाले उसे शत्रुता करने वाले कंस जरासंध शिशुपाल दंतपत्र पौंड्रीक वासुदेव इत्यादि जितने हैं दुष्टों का वध किया इन्होंने, और जो अपने निर्जन हैं भक्त धन हैं उनकी दुख हानि और सुख प्राप्ति का विधान करने वाले हैं, इसके द्वारा परम करुणामय है, अहेतु दयालु हैं, उनका जय हो, उनका जय हो। अथवा फिर जदवर का दूसरा अर्थ बतला रहे, जदवर मैंने जदुओं में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के परिषद में राज्यसभा में सुधर्मा नामक राज्यसभा, सुधर्मा राज्यसभा वहां की थी, वो कहां की थी, देवराज इंद्र की सभा थी, उनको उखाड़ लाए और द्वारकापुरी में स्थापित कर उग्रसेन को उसमें राजगद्दी पर बैठाया। इसके द्वारा यह भी होगा पारिजात पुष्प को उन्होंने देवताओं को जीत कर लाया, देवता लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इंद्र भूल जाते हैं कृष्ण की भगवत्ता और समझते हैं कि मैं ही एक छत्र आधिपत्य हूं सब विश्व ब्रह्मांड, इसलिए एक फूल भी लाने के लिए आदेश नहीं दे सकते थे पारिजात का, वृक्ष की तो अलग बात है। इसी समय नारदेशी घूमते घामते द्वारकापुरी में आए और रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16,108 महिषियां वहीं पर बैठी थी और देवराज के बगीचे से एक पारिजात का पुष्प ले आए और कृष्ण के हाथों में दे दिया और बोले कि आपकी सबसे जो प्रिया अधिक है उसको आप दे दो, मेरे सामने में देना होगा और उसको जल्दी में जाना है इसलिए मेरे सामने आप दे दो। समझ तो गए ये झगड़ा लगाने वाले हैं, आनाकानी करने लगे, किंतु वो बार बार जीत करने लग गए। इसलिए कृष्ण ने सबके तरफ में देख करके और रुक्मिणी जी को ये देख, रुक्मिणी को देते ही सप्तभामा बड़ी रुष्ट हुई और वहां से सीधे कोप भवन में गई। कृष्ण देखा कि मामला गड़बड़ हो गया, नारद जी तो खूब आनंद करते हुए लौट गए और ये मनाने के लिए कोप भवन में पहुंचे, और जब ही मनाने के लिए सिर्फ शरीर पर हाथ दे रहे हैं वो एकदम बिगड़ जाते, उनके हाथों को फेंक देती है। तुम क्यों रुकिए, बतलाओ तो कारण क्या है, एक पारिजात पुष्प के लिए तू ऐसी कर रही है? अरे तुम्हारे घर में पुष्प का पेड़ ही ला देंगे पारिजात का, तुम चिंता मत करो। कहे एक पारिजात का जो फूल नहीं दे सकता वो पेड़ का ला दो। अभी चलो, अभी उठा करके गरुड़ पर बैठा है और सीधे देवेंद्र लोग चले गए। देवताओं से मांगा एक वृक्ष का पौधा, नहीं दिया तो उखाड़ लिए और बड़े भयंकर युद्ध में उनको परास्त किया, और परास्त करके पेड़ सहित ले आकर के सप्तभामा के बगीचे में लगा दिया। अब जिस दिन पेड़ लगाएंगे उस शुभ मुहूर्त में इन्होंने कहा सप्तभामा इत्यादि 16,100 रानियों को भी निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण में भेजा, सभी आई और रुक्मिणी भी आई। किंतु रुक्मिणी को ये द्वेष नहीं रहा या मान नहीं कि इनके घर में पेड़ लग गया, हमको एक पुष्प मिला, इसलिए गंभीर स्वभाव है। वो खीरा है और सत्यभामा क्या है, धीरा और अधीरा दोनों है, तो कृष्ण को कौन प्रसन्न कर सकता है, धीरा धीरे। रस की दृष्टि से सप्तभामा जी का श्रेष्ठत्व है और साधारण रूप में पारिवारिक दृष्टि से रुक्मिणी जी का गौरव, वो सबको पुत्रवत और पुत्रीवत सब परिवार का पालन करने वाली है, सबको देखने वाली है, कृष्ण की सब प्रकार से सहायता करती है और ये बात बात में मान करने वाली है और कृष्ण को उनको मान कर, इसलिए कहते हैं ये सब लीलाओं को भी चिंतन करना चाहिए। इसी शब्द से जदुवर परिषद स्वर्ग और वीर दर्शन नाउ यू कैन
means Janu Bara, who is Bara, the best,
in the Yadu dynasty. Why is that? The Yadus are his associates, Durvyasa and Dharma. And by his arms, strong arms, he destroys all Adharma, all irreligious principles. So this is general meaning, so whatever explains some specific names now. So Yadupada means Krishna is the best among the Yadu dynasty. Two are the Yadus, Ugrasen Maharaj, Satyaki, and others. They are all assembled into the Yadu dynasty. And Krishna is best among them means that all serve Sri Krishna. Durvyasa means Krishna. He destroys all of the elements who are hostile to the Yadu dynasty, such as Tams Maharaj, Jarasandha, Shishupal, Tantavatra, Mudra, Vasudev. Krishna destroyed them all. So all of these pastimes come in the line of this verse. It means that it is Krishna's nature that as a pastime, he takes away the suffering of all his devotees and he caters for their happiness. He tries to fulfill their desires. So, Jayati, all glories to that Krishna, who is very, very attentive to the necessities of his associates. So here, Yadupada Upanishad means Krishna himself is an associate of Yadupada, the best of Yadus, that means the emperor of the Yadu dynasty, Ugrasen Maharaj. What does it mean? See, Krishna, he bought the assembly house of the demigods down to earth and installed it in Gorakha. And there he sat Ugrasen Maharaj on the throne and arranged his coronation as the emperor there. And Krishna became his citizen and took a junior position as his servant. Also, in this line, it is implied that Krishna defeated the devatas, the demigods, in war over the Parijat tree. So, one flower of Parijat, which is one species of flower from the heavenly planet, is extremely rare in this world. But what to speak of a whole tree? But Krishna, he fought with the demigods and brought a whole tree to this planet. How did it happen? One day, Narada Rishi, he was wandering here and there, and in the course of his wandering, he came to Dwarka. So there, Krishna was seated in the assembly of 16,108 trees. So Narada Rishi, he brought one Parijat flower with him, and he presented it to Krishna and requested him, please present this Parijat flower to your most dearest queen. So then Krishna, he thought to himself, Narada Rishi is making some trouble for me now. So Krishna was in a dilemma and he was wondering what to do. So Narada, he said, I don't have so much time, I have to leave so quickly to fulfill my request and give this to your most dearly beloved. So Krishna, he looked everywhere and then in the end he decided.
She became furious.
And in angry mood, she left that assembly and she took off her ornaments and she retired to Kop Bhavan. One place, Kop Bhavan, means the anger room. So then Narada Rishi was very happy that he had instigated a very wonderful pastime. And he left. So then Krishna, he went to pacify Satyabhama. She was lying down and Krishna came and touched her. But just like if you touch a snake, she pushed away the hand of Krishna in a very angry mood. And Krishna said, why are you upset? Over one Parijat flower, I'll give you a whole tree. So then Satyabhama, maybe she said, oh, you cannot even give me one flower. What to speak of one tree? I don't believe you. So Krishna said, you should come with me. And taking Satyabhama on the back of Garuda, they flew to Indralok. And there Krishna took one Parija tree, but Indra objected and there was a big war. Krishna defeated Indra and all the demigods, then returned to this earth planet, to Dwarka. And then Krishna, he planted that Parija tree in the courtyard of Satyabhama Devi. So then Satyabhama Devi was pleased. But not pleased, he's not yet. Why? Other queens had not seen. So then she sent an invitation to all the other 16,107 queens that all should come and have the darshan of her whole tree of Parija flowers. So then when they came, Rukmini also came. But Rukmini, she didn't become angry and she didn't become jealous. Why? Because Rukmini, she has Gambhir Swabhav, that means by nature, her moods are very deep and grave. So she was not upset. So if we understand the moods of heroines, then we know that Rukmini Devi, she's called Dera Nayika. That means the heroine who's very sober. And Satyabhama, what is she? Dera Dera. Fluctuating moods. Sometimes sober, sometimes restless and hot tempered. So from the ordinary point of view, if a person is Dera, then they have a Vedic character. But from the point of view, that's called rasa drishti, from the point of view of relishing the rasa of transcendental love, then the Dera de Nayaka is superior. So Satyabhama is superior from rasa drishti. So here we see, Yadupada Parishat Swa Dorabhirasana Dhamma, that is Krishna's nature in Dwarka, that he carries out the, he fulfills the desires of his wives, he'll pacify them if they become angry, and in this way, he's serving his family members. Therefore, the devotees, they should chant Harinam and contemplate the wonderful and merciful qualities of Sri Krishna when they remember this line, Yadupada Parishat Swara.
देवताओं को पराजित कर वृक्ष को उखाड़ लाए और वो सत्यभामा को घर में रोपण कर दिया और सुधरना सभा को उसी समय ले आए। वो उग्रसेन महाराज को दिया। उग्रसेन कौन? अपना द्वेष करने वाले कंस और उस कंस के पिता उग्रसेन को केवल यही नहीं राज्य पहले दिया, अपने राज्य दिया नहीं, पूरा राज्य उग्रसेन को दे दिया। और सुधरनान सभा भी उनको दिया जिसमें वातानुकूल सब व्यवस्था, गर्मी में ठंड, ठंड में गर्मी, उसमें हजार आदमी बैठ सकते हैं, 10,000 भी, 20,000 आदमी भी, और उसमें 10 आदमी भी बैठने की व्यवस्था, इच्छानुसार में संकुचित और विकसित होने लगे। ऐसी देव सभा को भी लाया, राज्य को भी दिया, इसका क्या तात्पर्य? कृष्ण की परम कारुणता, बड़े अहेतुक दयालु हैं, उग्रसेन की निजजन है, जैसे देवकी और वसुदेव जी अपने माता पिता हैं, ऐसे उग्रसेन अपने भक्तों में से थे। यहाँ पर ऐसा प्रश्न हो सकता है, कृष्ण यदि ऐसे ऐश्वर्य से युक्त हैं, इच्छा मात्र से ध्वंस सृष्टि का और पुनः सृष्टि सर्जन कर सकते हैं इच्छा से, तो फिर देवकी जन्म बाद हो, देवकी के पुत्र है, ऐसा क्यों कहा गया? ये भी करना है, क्या करना है? वे अपने भक्तजनों के बिना गाथाय करोमी विविधा क्रिया, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत सी क्रीड़ाओं को करता हूं, उनका विनोदन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सब मैं करता हूं। और अपना जो ऐश्वर्यमय भाव क्या समस्त ब्रह्मांड के परे भी रह सकते हैं, सारा ब्रह्मांड उनके एक लोक रूप में और सब प्राणियों के अंदर में अणु से भी अणु होकर के रह सकते हैं, उनका स्थूलत्व या हर्षत्व इत्यादि जो गुण हैं वो सब कृष्ण करने में समर्थ हैं और करते हैं कब अपने भक्तों को विनोदी प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए असुरों का संहार करने के लिए इच्छा मात्र से कर सकते थे, किंतु कृपा करके अपने भक्तों का नाना प्रकार से विनोदन करने के लिए देवकी के पुत्र के रूप में वो आए। यहां पर दोर्भी, दोर्भी कौन सा वचन है? एक वचन तो है नहीं, दो वचन भी नहीं है, ये बहुवचन दोर्भी क्या है? बालक भी होता है, तो ये बहुवचन क्या? तो बहुवचन क्यों किया? ब्रज में तो सब समय दो बाहु युक्त थे, दो भुजाएं, किंतु मथुरा में